Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। यूरोप में एक के बाद एक क्रांति की आंधी चली जिसके असर से कोई अछूता नहीं रहा। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 19वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो हम बात कर रहे थे यूरोप में क्रांतियों की। समृद्ध वर्ग के लोग इस आंधी की लहर पर सवार हो गए, लेकिन जो कमजोर वर्ग के लोग थे उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। पूंजीपतियों की कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा प्रगति के लिए लोगों को हमेशा या खेतों में या फिर कारखानों में व्यस्त रखें। सरकारों को भी ज्यादा धन की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बेरोजगारों और आवारा लोगों पर शिकंजा कस दिया। ब्रिटेन में कानून पारित किया गया कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आवारा फिरता मिलेगा तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और उसके सीने पर वी गोद दिया जाएगा। उसके बाद उसे 2 साल के लिए गुलामी करनी होगी। इस दौरान उसे सिर्फ खाना और पानी दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर उसे आवारा घूमते हुए देखा गया तो उसके माथे पर एस गोद दिया जाएगा और उसे पूरी उम्र गुलामी करनी पड़ेगी। एक दूसरे कानून के तहत बेकार घूमने वालों को गाड़ी के पीछे बांध दिया जाता था और फिर उन्हें कोड़े मारे जाते थे। उसके बाद उनकी गर्दनों में लोहे के भारी रिंग डाल दिए जाते थे। इसके अलावा एक कानून भिखारियों के खिलाफ बनाया गया था जिसमें उन्हें जला देने और कानों में सुराख कर देने की चेतावनी दी गई थी। उसके बाद भी अगर उन्हें भीख मांगते हुए पकड़ा जाता था तो उन्हें फांसी दे दी जाती थी। ये सभी कानून मजदूरों की संख्या बढ़ाने और उनकी मजदूरी को कम करने के लिए पारित किए गए थे। फ्रांस में बेकार घूमने वालों को निर्वासन और नौकायन में से किसी एक का चयन करना होता था। डच और फ्रांसीसी सरकारों ने जहाज़ों में काम करने वाले मजदूरों को खोजने के लिए स्ट्रे हंट संगठन की स्थापना की। यहाँ तक कि उन्होंने अदालतों के छोटे छोटे अपराधों के जुर्म में मौत की सजा देने के लिए मजबूर किया। फैक्ट्री मालिकों ने बड़ी बड़ी मशीनों पर काम करने के लिए बच्चों को भी काम पर रखा। बेल्जियम में टर्फ बुनाई उद्योग पूरी तरह से कम उम्र के लड़कों के हाथ में था और 12 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों को काम पर रखना मना था। बच्चे अपने नियोक्ता के आदेशों को अधिक तत्परता से स्वीकार करते थे और उन्हें वयस्कों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। कभी कभी फैक्ट्रियों में जो थोड़ा सा खाना उन्हें दिया जाता था उसे उनकी मजदूरी करार दे दिया जाता था। इंग्लैंड में बच्चों की सहायता के लिए स्थापित की गई कई चैरिटी संस्थाएं बच्चों को फैक्ट्री मालिकों को बेच दिया करती थीं। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम में स्थित लंकाशायर की फैक्ट्रियां ऐसे बच्चों से भरी हुई थीं। इन संस्थाओं के प्रमुख बच्चों से कहते थे कि आपका ख्याल रखने वाले दयालु लोग कारखानों में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें मांस और दूध दिया जाएगा, वे उन्हें अपने घोड़ों पर बिठाएंगे और उन्हें सोने की घड़ियाँ और पैसे देंगे। बर्मिंघम में 7 साल की उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर रखा जाता था, लेकिन इंग्लैंड के उत्तर और दक्षिण पश्चिम में कताई मशीनों पर काम करने के लिए 4 साल तक के बच्चों से भी काम लिया जाता था। जब 1796 में फैक्ट्री मालिकों ने सरकार से कहा कि वे नए करों का भुगतान नहीं कर सकते, तो ब्रिटिश सरकार ने लागत कम करने के लिए बच्चों से काम लेने की सिफारिश की। फैक्ट्रियों में बच्चों से 12 से 18 घंटे काम लिया जाता था। जो फैक्ट्री मालिक सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक 13 घंटे काम लिया करता था, उसे काफ़ी अच्छा इंसान माना जाता था। कभी कभी बच्चे बहुत थक जाते थे और काम के दौरान ही सो जाते थे। कभी मशीनों में आकर उनकी उंगलियां कुचल या कट जाती थी। फैक्ट्रियों में साफ सफाई की बहुत कमी होती थी। खिड़कियां संकीर्ण होती थीं और लगभग हमेशा बंद रहती थीं। कपास की धूल से बच्चे सांस की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते थे। 1784 में दुनिया में कपड़ा मिलों के गढ़ मैनचेस्टर में एक अजीब बीमारी ने कई कामकाजी बच्चों की जान ले ली थी। इसे फैक्ट्री फीवर का नाम दिया गया था। अमीर बनने का जुनून धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। यहाँ तक कि पादरी, राइटर्स और फिलोसफर्स भी अमीर बनना चाहते थे। फादर एंटोनी डी ला वॉल्ट एक फ्रांसीसी पादरी थे जो 1750 के जेसुइट्स में शामिल हुए थे। जेसुइट्स पुजारियों की एक संस्था थी जो दुनिया भर में ईसाई धर्म फैलाने के लिए काम करती थी। उन्होंने लोगों को सरल और गरीब जीवन जीने के लिए आमंत्रित किया और धन को शैतान का जाल बताया। फादर एंटोनी ने एसोसिएशन से कहा कि वो पादरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कैरेबियाई द्वीपों पर भेजें। इनमें से कुछ द्वीप फ्रांसीसी शासन के अधीन थे, जहां बड़े पैमाने पर गन्ने की फसल उगाई जाने लगी। फादर एंटोनी ने इन द्वीपों में प्रचार किया और कुछ समय बाद एसोसिएशन को एक पत्र लिखकर सुझाव दिया कि एसोसिएशन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्कूल स्थापित करे और इन स्कूलों को वित्त पोषित करने के लिए आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो। इसके बाद एसोसिएशन की सहमति फादर एंटोनी के लिए उस रास्ते पर कदम आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी, जिसका कोई अंत नहीं था। उन्होंने कैरेबियाई द्वीपों में विशाल भूमि पर खेती की और यूरोप को कॉफ़ी और चीनी का निर्यात करना शुरू कर दिया। उन्होंने फ्रांस में एक चीनी फैक्ट्री की स्थापना की और फिर भारत में एक कंपनी शुरू की। इसी के साथ उन्होंने अन्य फ्रांसीसी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। फादर एंटोनी ने गन्ने के खेतों और कॉफ़ी के बगानों का विस्तार करने के लिए हजारों काले दासर खरीदे। अब हर कोई जानता था कि उन्होंने जेसुइट्स सोसाइटी के नाम का सिर्फ इस्तेमाल किया था और ये सभी उनकी संपत्ति थी। एंटोनी डी ला वॉल्ट ने खेती और गुलामी में निवेश जारी रखा, जिससे उनकी संपत्ति में लगातार वृद्धि होती रही। फ्रांसीसी लोग फादर एंटोनी द्वारा दौलत जमा करने को जेसुइट्स के नारे के विरुद्ध मानते थे, जो गरीबी की प्रशंसा करती थी और धन की पूजा को शैतान का दुष्ट जाल मानती थी। यूरोप में लोगों पर अमीर बनने का इतना ज़्यादा बुखार चढ़ा कि राइटर्स ने ऐसी किताबें लिखीं जिनमें पैसे की पूजा और अमीर बनने को एक अच्छी आदत बताया गया। इन्हीं राइटर्स में से एक मशहूर फिलोसोफर जॉन लॉक भी थे। लॉक ने 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की। उन वर्षों में इंग्लैंड धीरे धीरे अमेरिका में आगे बढ़ रहा था और रेड इंडियंस को पीछे धकेल रहा था। लॉक ने टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा विशाल अमेरिकी भूमि के इस्तेमाल को एक स्वाभाविक और बुद्धिमानी भरी बात बताया, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी राय में रेड इंडियंस ने अमेरिकी प्रकृति का सही लाभ नहीं उठाया था। जॉन लॉक ने लिखा, कल्पना कीजिए कि आप एक सेब के पेड़ के पास पहुँचते हैं जो किसी का नहीं है। अब इस पेड़ का फल उस व्यक्ति का है जिसने इसे तोड़ा या पेड़ के नीचे से इकट्ठा किया है। जो पानी बर्तन में है वो उसका है जिसने उसे प्रकृति से हासिल किया है। ईश्वर ने सभी लोगों को संसार दिया है, किसी को उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसने इसका एक हिस्सा ले लिया और दूसरों के लिए पर्याप्त छोड़ दिया। लॉक ने ये ग्रंथ उन दिनों लिखा था जब रेड इंडियंस की भूमि पर अंग्रेजों के युद्धों और रक्तपात के समाचार इंग्लैंड पहुंच रहे थे। इसका मतलब था कि अगर कुछ लोगों के मन में अभी भी रेड इंडियंस को लेकर कुछ हमदर्दी है और वे अपने देशवासियों को आक्रामक और हिंसक मानते हैं, तो अपने महान दार्शनिक और शिक्षक की बातें सुनकर उनके दिल शांत हो जाने चाहिए थे और उनके मन को राहत मिल जानी चाहिए थी। दरअसल जॉन लॉक ने ये शब्द अपनी अंतरात्मा को शांत करने के लिए लिखे थे। उन्होंने कई यूरोपीय लोगों की तरह पूंजीपति बनने के बारे में सोचा और विशेष रूप से गुलामों के व्यापार को बहुत लाभदायक पाया। लॉक ने दो अंग्रेजी दास कंपनियों में निवेश किया था। उन्होंने रॉयल अफ्रीकन कंपनी के शेयर खरीदे और उन्हें इसके मुख्य शेयर धारकों में से एक माना जाता था। जॉन लॉक इन कंपनियों में निवेश से संतुष्ट नहीं थे। राजाओं और प्रभावशाली हस्तियों की सेवाओं के बदले कैरोलिना में उन्हें 48,000 एकड़ जमीन दी गई, जिसके बाद वो उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े जमींदारों में से एक बन गए। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी बस्तियों के प्रमुखों ने टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट किताब का इस्तेमाल किया और भूमि स्वामित्व पर नए कानून पारित किए। लॉक और कई अन्य यूरोपीय लोगों ने रेड इंडियंस की भूमि पर कब्जा करने के लिए इन कानूनों का इस्तेमाल किया। कोयल एक ऐसा परिंदा है जो बाकी दुनिया की तुलना में इंग्लैंड में अधिक पाया जाता है। ये परिंदा एक अजीब जीवन जीता है। ये कभी घोंसला नहीं बनाता और जब इसे अंडे देने होते हैं तो ये दूसरे पक्षियों के घोंसले में चला जाता है, और जब पक्षी अपने घोंसले में नहीं होता तो उसके अंडों के बगल में अपने अंडे देता है और वहाँ से चला जाता है। जिस पक्षी का घोंसला होता है वो अंडों को सेता है और उन्हें गर्मी प्रदान करता है। जब अंडों से चूजे निकलते हैं तो कोयल का बच्चा, जिसने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली हैं, घोंसले के असली मालिक के चूजों पर हमला कर देता है और उन्हें एक एक करके घोंसले से बाहर फेंक देता है। पक्षी जब अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए लौटता है तो सोचता है कि ये उसके अपने बच्चे हैं और वो उन्हें सारा भोजन दे देता है। कोयल का जीवन कुछ यूरोपीय देशों के इतिहास से एक अजीब समानता रखता है। वो देश जो लंबी समुद्री यात्राओं के बाद नए इलाकों में पहुंचे, शुरुआत में वे मूल निवासियों के मेहमान बने, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने मूल निवासियों को नष्ट करना शुरू कर दिया और उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया। लुइस मंफोर्ड नामक एक यूरोपीय थिंकर ने पूंजीवाद की तुलना कोयल के चूजे से की है, जो एक बार एक स्थान पर रहने के बाद किसी अन्य प्राणी को अपने पास बर्दाश्त नहीं करता। इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनियां जो एक के बाद एक स्थापित हुईं, शुरुआती दिनों में उन्होंने मूल निवासियों के साथ व्यापार किया। हालांकि इनमें से कई धोखाधड़ी में लिप्त थीं और वो वस्तुओं की कीमत आश्चर्यजनक रूप से उनकी वास्तविक कीमत से कहीं ज़्यादा रखती थीं। इसके बावजूद वो इतने मुनाफे से संतुष्ट नहीं थी और कुछ समय बाद उन्होंने इन इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया जहां वो व्यापारिक गतिविधियां कर रही थीं। धीरे धीरे उन्होंने मूल निवासियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल करना शुरू कर दिया। यूरोप की ये कंपनियां एक दूसरे को भी बर्दाश्त नहीं करती थीं। उनके बीच ये प्रतिद्वंद्वता अंततः युद्ध का कारण बनती थी, जब तक कि उनमें से एक दूसरे को घोंसले से बाहर निकाल कर नहीं फेंक देती थी। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। उसी विजेता कंपनी के शेयरधारक शेयर बाजार में आपस में ही भिड़ जाते थे और एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते थे। बड़े शेयरधारक छोटे निवेशकों के शेयर उनसे छीनकर उन्हें कंपनी से बाहर फेंकने की कोशिश करते थे। सरकारों और कंपनियों को अपने रास्ते से हटाने के बाद नौबत लोगों और अपने ही देशवासियों को हटाने तक पहुँच जाती थी। आखिर में दो बड़े पूंजीपति एक साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए उनमें से एक हट जाता था ताकि दूसरा व्यक्ति कंपनी के शीर्ष पर पहुंच सके। पूंजीवाद कोयल का चूजा था, जो अपने जीवन के पहले क्षण से ही अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करना चाहता था, और उसके पूरे जीवन का खुलासा एक वाक्य में किया जाता था, शुरुआत धोखे से और अंत युद्ध से।